श्री श्री राधा विनोद जी महाराज की, श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की, श्री कृष्ण दास बाबा जी महाराज की, तिरणवारी धाम की, रति कुंड की जय, जय श्री राधे श्याम। तभी हम बहुत अद्भुत स्थान पे आए हैं। यहाँ पर यात्री आते हैं क्या? यात्री लोग आते हैं यहाँ पर?
आते हैं बहुत, सब गाड़ियाँ हमें गुड़गांव से, बरसाने से सब।
सो लेकिन जब भी मैं आता हूँ तो मुझे सब खाली मिलता है और मुझे अच्छा लगता है बहुत, क्योंकि भीड़ भाड़ में, शोर शार में वो सब कथा वथा नहीं हो सकती है ना। लेकिन जब भी मैं आया हूँ यहाँ पर, मुझे शांति, परम शांति का अनुभव हुआ है। तो संक्षेप में पहले मैं आके सिद्ध बाबा की कहानी सुनाता हूँ। ब्रज में चार या पांच सिद्ध बाबा हुए हैं। हाँ, एक रामकृष्ण बाबा गौड़िया, एक मधुसूदन बाबा गौड़िया जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के शिक्षा गुरु थे, मधुसूदन बाबा, उनकी समाधि सूर्य कुंड पे है। और एक कृष्णदास बाबा, और चौथे कौन? कौन?
उनको नाम ना।
हाँ, एक चौथे बाबा भी है, वो सिद्ध बाबा इसलिए कहते कि वो बहुत चमत्कारी सब लोग थे, बहुत चमत्कारी थे। तो कृष्णदास बाबा जी महाराज जो है यहाँ के, श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज, इनको रोज राधा रानी का दृष्टांत हुआ करता था। रोज राधा रानी प्रत्यक्ष उनसे संवाद करती थी। गैबर कुंड पे आपने देखा, जब ही आप किनारे किनारे चलते थे तो छोटा सा मंदिर है उधर पेड़ के नीचे, देखा आपने? उधर मोनी बाबा रहते थे, तो मोनी बाबा भी राधा रानी से बात करते थे। जब एकांत में बात करते थे तो छुप छुप कर छोटे रमेश बाबा सुना करते थे। जब मोनी बाबा को पता चलता था कि कोई सुन रहा है तो बहुत डांट फटकारते थे, तभी भाग जाते थे, ऐसा उन्होंने अपना अनुभव बताया है। तो ये बात बड़ी बड़ी बात है, बहुत भगवान से इस भौतिक विश्व में यहाँ का शरीर धारण करते हुए साक्षात दर्शन वार्तालाप होना बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे कुंभन दास जी, चतुर्भुज दास जी है ना, सूरदास जी, चित्त स्वामी, गोविंद दास जी, कृष्णदास जी, ऐसे अष्टछाप भी कृष्ण से नित्य वार्तालाप और क्रीड़ा खेल खेला करते थे। तो इनको राधा रानी ने कहा था कि आप ब्रज छोड़ के मत जाना, आप यहीं रहना। तो ये रहते थे वो। एक दिन न जाने क्यों किसी ने उनको प्रेरणा दी, चलो चार धाम की यात्रा करते हैं। चार धाम का अर्थ क्या होता है? बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और श्रीरंगम। ये चार धाम की यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। तो किसी ने उनको प्रेरणा दी, चलो चार धाम की यात्रा करते हैं, चारों जगह का पानी ला के रामेश्वर पे चढ़ा देते हैं। तो राधा रानी ने फिर दर्शन किया उनको, बोला मत जाओ। नहीं नहीं, मैं यूँ गया और यूँ आया। और वो गए। अभी कैसा है यहाँ पर, माधुर्य धाम है यहाँ पर, सब लीला जो है ना वही प्रेम की लीला है, कोई ऐश्वर्य नहीं है। इसके बाहर गए तो क्या है, मथुरा में क्या है, द्वारका में क्या है, ऐश्वर्य लीला है पूरी। तो वो इतने रम गए वहाँ पर कि द्वारका में उन्होंने, वो जब दीक्षा देते ना, दीक्षा द्वारका में, द्वारका के संप्रदाय में, तो वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ मुद्रा, मुद्रा 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 चढ़ाते हैं, मुद्रा, हाँ मुद्रा चढ़ाते हैं। ये समझ में आता है उसे कि वो उस संप्रदाय का शिष्य है, शरीर पर ही वो मुद्रा चढ़ाते हैं। साउथ इंडिया में भी होता है ऐसे। तो उधर द्वारका में ना उनको सब वो मोहर वोर लगाई गई, मुद्रा विद्रा लगाई गई, चार धाम की यात्रा किए और लौट के आए। उस समय हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी, हाँ गौर आविर्भाव भूमेस्तम, वो जो हमारे गौर किशोर बाबा जी महाराज है जो 146 साल तक जिए, वो पहले सूर्य कुंड में भजन करते थे। वहाँ पर गौर किशोरदास बाबा जी की, महाराज की भी भजन कुटी है, हुआ करती थी, अभी वो लुप्त हो गई। लेकिन मुझे लगता है अभी वो जगन्नाथ दास बाबा जी की भी लुप्त हो गई है, अभी मधुसूदन बाबा की वहाँ पर शिला भी है, सब कुछ है। तो किसी कारण से जगन्नाथ दास बाबा जी जहाँ पर आप गए ना पहले, वहाँ पर आए भजन करने के लिए, और इनका उनका बड़ा प्रेम था, सब कहानी उनको पता थी। जगन्नाथ दास बाबा जी यहीं पर थे। जब ये कृष्णदास गोस्वामी जो बाबा जी महाराज जब लौट के आए ना यहाँ पर, तो उनको कभी भी दर्शन नहीं हुआ, उसके आगे दर्शन ही बंद हो गया, दर्शन वार्तालाप सब बंद। बाकी प्रेम भक्ति सब है, ऐसा नहीं है। तो नेचुरली वो विरह में गए, बहुत दुखी हो गए, कह रहे मुझे तो रोज का संग था वो सब बंद हो गया, तो बड़ा दुख हुआ उनको। और ये सब उनकी जो तड़प है वो जगन्नाथ जी महाराज देखते थे, क्या करेंगे, लेकिन करेंगे क्या, आपको आदेश दिया था मत जाओ, फिर भी आप गए। तो एक दिन क्या हुआ ना, बहुत अद्भुत घटना हुई, एक दिन उनके पैरों से ना अग्नि प्रज्वलित हो गई अपने आप ही, और धीरे धीरे ऊपर आने लगी, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, राधे राधे राधे। लेकिन वो इतने जोर से चिल्लाने लगे कि वहाँ से जगन्नाथ दास बाबा जी भाग के आए देखने के लिए, और वो भस्म हो गए ना उसी समय, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो अग्नि कोई लगाए हुई तो अग्नि नहीं थी, वो तो ठाकुर जी की लीला है। तो वो जलकर भस्म हो गए, समाप्त हो गए, ये सब जगन्नाथ दास बाबा जी ने अपने आँखों से देखा। उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी वृंदावन धाम छोड़कर मायापुर धाम चले गए।
सबने देखो, हमारे बाबा ने नहीं देखो, पर बाबा ने देखे।
तो हाँ, तो उतने समय तक तो सब गौड़िया वैष्णव यहाँ आते थे ना, क्योंकि अंतिम हमारा लक्ष्य क्या है, वृंदावन आना है। चैतन्य महाप्रभु भी बार बार वृंदावन आने के लिए प्रयास करते थे, तो वो भी सब कुछ करके इधर ही आए थे। लेकिन उन्होंने देखा कि वृंदावन धाम बहुत कठिन धाम है, यहाँ पर अपराध बहुत गंभीरता से लिए जाते हैं, बहुत गंभीरता से, बहुत गंभीरता से अपराध लिए जाते हैं। और बताया हुआ जो आज्ञा है उसका पालन नहीं होगा तो बहुत उसके दुष्परिणाम होते हैं। और मायापुर धाम कैसा है, नवद्वीप मायापा औदार्य धाम है, वहाँ पर सब अपराध माफ़ किए जाते हैं, क्षमा किए जाते हैं। तो उनको समझ में आया कि इतने बड़े सिद्ध महात्मा जो राधा रानी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते थे, वो ऐसी स्थिति में गए और अग्नि में जलकर भस्म हो गए। तुरंत हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज यहाँ से छोड़कर मायापुर चले गए। कहाँ चले गए, कोलाद्वीप, गंगा जी के किनारे। आप लोग गए वहाँ पर, कोई बहुत सुंदर स्थान है उनका, वहाँ पर बिहारी जो था ना उनका असिस्टेंट, उनको टोकरी में देखा घुमाता था, वो इधर भी था, उधर भी चला गया वो उनके साथ में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गौरांग महाप्रभु की जो भूमि है वो बहुत दयालु है, वो किसी प्रकार का अपराध स्वीकार नहीं करते, इसलिए अपने जीवन के आखिरी समय तक उसी जगह हमारे सिद्ध बाबा रहे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। और उन्होंने वहाँ पर ऐसा भजन किया कि उनका अभी वहाँ पर समाधि है, जिस जगह पर भजन किया वही समाधि है उनकी। लेकिन जहाँ भजन किया वो एक पेड़ है उधर, उस पेड़ को कहते हैं हरे कृष्ण ट्री, लिखा हुआ है हरे कृष्ण पेड़, क्योंकि वो पेड़ की जो आत्मा है वो इनके भजन से गौलोक धाम जाएगी गई है। द ट्री इज अ डिवाइन ट्री, अभी वो ट्री नहीं है, उसका बेटा बेटी जो भी है वो है उधर। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बहुत चमत्कारी महाराज थे, 147 साल तक जिए वो, और उनके वो इतने जर्जर हो गए थे, जर्जर का अर्थ क्या होता है, जरा का मतलब बुढ़ापा, जर्जर यानी बहुत ज़्यादा बूढ़े, उनकी पलके भी ना उनको ऊपर करने की शक्ति नहीं होती थी। तो बिहारी जो उनका सेवक था वो अपने हाथों से पलके उठाकर दिखाता था, देखो महाराज जी कोई आया है, ऐसे ये छोड़ दिया तो गिर जाता था, पूरा झुके हुए थे ऐसे, आधी गर्दन सब कुछ झुका हुआ था। उस अवस्था में ठाकुर भक्ति विनोद उनके शिष्य उनको नवद्वीप धाम ले गए, अंतपुर यानी क्या अंतरद्वीप मायापुर है ना, और वहाँ पर उन्होंने वो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान प्रकट किया। गौर आविर्भाव भूमि स्वम, गौर भाव भगवान जहाँ आविर्भाव किए उस भूमि को निर्दिष्टे निर्देश किया उन्होंने कि यही भूमि है। तो वो महाराज जी इस साक्षात्कार के साथ यहाँ से मायापुर चले गए। अभी आप लोग सोच लीजिए आपको क्या करना है, बहुत विचार करने वाली बात है।
एक बात कह गए हमारे गांव से, जैसे आप बड़े बूढ़े बड़े लोग हैं, तो हमारे बाबा ये कह के गए वक्त अग्नि प्रवेश भाई,
हाँ हाँ,
कि आज के दिन फूस की मावस सही बात है, फूस की मावस जो अभी निकल के गई है 11 तारीख को,
पुष मतलब पौष, पुष पौष,
देसी घी में साधु ब्राह्मण जितनों भी आवे यहाँ
भोजन कराओ,
भोजन कराओ हुआ सब्जी देसी घी में, तो अभी 10,000 आदमी की भीड़ है 11 तारीख में यहाँ
पौष की अमावस्या,
हाँ जी
है ना,
हाँ जी।
तो कितने तारीख को है वो,
11 तारीख जो निकल गई,
11 तारीख को
पीछे निकल गई,
अच्छा पीछे निकल गई, हो गया मतलब,
हाँ जी, हो गया,
हाँ हाँ। तो उन्होंने क्या बताया, पुआ और
पुआ सब्जी,
सब्जी
देसी,
पुआ आपने खाया क्या, पुआ जैसे मालपुआ होता है ना, वो वही है लेकिन वो फ्लैट होता है और वो एक पिज्ज़ा या डोसा या उत्तप्पा के जैसा होता है, लेकिन उसको जब भी गोली बनाकर डालते हैं ना तो उसको पुआ कहते हैं।
उगाई करके बाद ना उगाई करे पैसा कमने से, और 10,000 आदमी की भीड़ जो रहे सबके लिए भोजन कराया जाए, फिर बस्ती में प्रसाद बटाए, बस्ती ना करे भोजन,
बत्ती मतलब
हमारा गांव भोजन नहीं
करता, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, वो भाव है बेरो बेरे भाव, बेरे भाव से, हाँ। तो वो कह रहे हैं कि जब वो बाबा जल रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मेरे तिथि पर जो भी आएगा उसको घी का खाना खिलाना है आपको प्रसाद, लेकिन उसमें से गांव के ही लोग धन इकट्ठा करते हैं और सबको खिलाते हैं लेकिन खुद नहीं पाते हैं प्रसाद, वो
नाम किसी सेठ का पैसा लेंगे,
हाँ
अपनी कमाई में से गांव बड़ों
का। अभी वो जो 10,000 लोगों का भोजन कराने का काम है उसको रसोई बनाने के लिए ये बनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं
भंडार घर बनाया है,
ये भंडार घर मतलब रसोई घर, और ये भी गांव वालों के ही धन से बना हुआ है, किसी से नहीं बनाया हुआ। तो बहुत सुंदर भाव है ब्रजवासियों का, और पीछे जो इतिहास है ना उसकी धरोहर भी बहुत बढ़िया है। वो आप लोगों को अपने बालकन को उनके बालकन को सबको समझाना चाहिए, क्योंकि ये जो धरोहर अभी छूट गई ना तो 2-3 साल में 2 पीढ़ी में ये भंडारा बंद हो जाएगा, नहीं नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जब तक हम अपने बालकों को नहीं बताते ना तब तक हमारी संस्कृति हमारी संस्कृति जो है वो आगे बढ़ने के लिए बताना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी है। भाई छोटे छोटे बालकन अभी खेल रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन बड़े होंगे तो उनको पता होना चाहिए।
भंडारे के मामले में वो तिथि पे कोई दखल देगो,
हाँ
वहाँ को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा,
हाँ
बहुत बड़ा,
क्योंकि आपको लगेगा लगता होगा कि राधा रानी ने उनको दंड दिया, लेकिन राधा रानी ने दंड नहीं दिया, वो तो भगवत धाम ही चले गए है ना, लेकिन एक बड़ी शिक्षा दे के गए वो अपने जीवन में। भगवान भी कैसे ना, अरे भीष्मदेव इतने महाजन महाभक्त हैं, उनको कौरवों के साइड से लड़वाया उन्होंने, क्यों उनको विश्व को एक बड़ी शिक्षा देनी थी कि भीष्मदेव जैसा व्यक्ति भी अगर असत्य के पक्ष में युद्ध करता है तो उसको भी समाप्त होना है, इसलिए भीष्मदेव को वहाँ जाना पड़ा है नहीं, द्रोणाचार्य और भीष्मदेव को। तो भगवान अपने भक्तों के द्वारा ही ऐसा कर्रा काम करवा सकते हैं, अगर कोई कठिन काम करवाना है जिसमें निंदा है लोक निंदा है जिसमें कुछ मानहानि है तो वो मानहानि साधारण व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान की इच्छा को देखकर उनका शुद्ध भक्त उसको स्वीकार कर सकता है। ठीक है महाराज जी आपकी इच्छा है तो मैं वो नेगेटिव रोल करूँगा है ना। जय विजय जो थे ना वो भगवान के बड़े भक्त हैं, वैकुंठ के द्वारपाल है वो, उनको 7 बार पृथ्वी पर भक्त बनने का शाप मिला था, उन्होंने कहा नहीं इतना लंबा तो रह सकते नहीं हम लोग वहाँ पर, तो डिस्काउंट में क्या किया 3 बार राक्षस का जन्म डिस्काउंट में मिला उनको, उन्होंने ठीक है राक्षस बन के आएंगे कोई बात नहीं भगवान की इच्छा पूरी करेंगे, तो 3 बार आए वो, पता है ना आपको, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र बनकर वो 3 बार आए, तो उनके शाप की पूर्ति हुई। लेकिन जब महाप्रभु चैतन्य आए तो अपनी इच्छा से भाग के आए वो जगाई मदाई बनकर, जगदानंद और मधवानंद बाद में गोस्वामी बने, जगदानंद और माधवानंद गोस्वामी। माधवानंद जो मधाई था वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, उसने निताई का अपराध किया था। यानी बेस तो ये भक्तों को ही चुनकर भगवान अपने आप को हमको सबको शिक्षा देते हैं। तो वो है राधा गिरधारी का मंदिर, जहाँ पर ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने अपना भजन किया था। और मैं जब भी कुछ साल पहले आया था तो वहाँ पर बड़े सिद्ध महात्मा भजन करते थे। अरे वो छः छः महीना निकलते नहीं थे बाहर, दर्शन भी देते नहीं थे, दिन रात भजन करते थे, दिन रात। वो जब थे तब भी मैं उधर आसपास घूम के आया हूँ। वो बड़ी सिद्ध स्थली है, वो भजन की स्थली है। आप भजन करने को बैठेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। एक बात बताना आपको ज़रूरी है कि हम और आप सब जो जप करते हैं ना, वो संतों की कृपा है। जिस देश में या राज्य में या शहर में या गांव में संतों ने भजन किया है, उसका लाभ सभी भजन करने वालों को मिलता है। जैसे मैं हिमालय में जाता हूँ, तो हिमालय में सब जितने भजन करने वाले तपस्वी हैं उनके सारे तप का लाभ मुझे वहाँ भजन करने में मिलता है, क्योंकि उनकी तप की शक्ति जो है ना वो अवकाश में रहती है, वो मटेरियल नहीं है, वो समय के साथ नष्ट नहीं होती है। जब जप करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, तो एक दिव्य शक्ति अवकाश में निर्माण होती है और वहीं रहती है, क्योंकि वो शाश्वत है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टाइम, काल से प्रभावित नहीं है वो शक्ति, और वो शक्ति आसमान में रहती है और हर एक भजन करने वाले व्यक्ति को उसका लाभ होता है। दे कनेक्ट इन टू दैट बाय व्हेन यू चैंट। इसलिए बार बार हम बताते हैं, सब लोग संत लोग बताते हैं, ध्यान से जप करो, ध्यान से जप करो, यहाँ वहाँ मत भटको, ध्यान से जप करो, क्योंकि वो जो दिव्य एनर्जी है जो आपको उपलब्ध है वो आपको मिलनी चाहिए ना, कनेक्शन होना चाहिए ना आपका। इधर उधर भटक के करेंगे तो कनेक्शन क्यों मिलेगा आपको। इसलिए जप में ना सबसे बड़ी बात है न सोते हुए ध्यान से करना है और जप नहीं करना है, पुकारना है। समझ में आया आपको? 16 माला नहीं करना है, नंबर थोड़ी गिनना है, जप करना है। जप नहीं करना है, पुकारना है, पुकारो, क्योंकि भगवान का नाम, नाम क्यों होता है? आपका नाम योगेश्वर है, क्यों नाम है? आपको पुकारने के लिए है वो, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, आपकी एक संज्ञा है, वो पहचान है आपकी। उस नाम को जब पुकारा जाएगा आप तुरंत देखेंगे, लेकिन अगर आपको पुकारा नहीं जाएगा तो क्यों देखेंगे आप, है ना? तो पुकारने के लिए ही नाम होता है, और नाम को पुकारने से ही जिसका नाम पुकार रहे हैं उसका ध्यान आपकी ओर जाता है। तो अगर पुकार में पुकारी नहीं है तो जिसका नाम पुकार रहे वो क्यों देखें आपको? उसको पता चलता है, सबको पता चलता है, आपको भी पता चलता है। आपका बच्चा अगर गार्डन में खेल रहा है और मम्मी ऐसा बोलेगा तो वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन बहुत जोर से चीखेगा ना तो आप धड़ाधड़ गैस बंद करके आप भागोगे नीचे, कुछ भयंकर हो गया है, क्योंकि वो चीख में एक प्रकार की तीव्र भावना है जो आपको दिल को छूती है और एक इमरजेंसी निर्माण करती है, जो आप अभी और कुछ नहीं कर सकते, आपको सब छोड़ के भागना है। भले गैस चालू रहे बंद रहे, जैसे भी लॉक किया नहीं किया, घर चाबी अंदर भूल गए, फिर भी ऐसी इमरजेंसी है कि आप सब कुछ भूल के भाग जाते हो, क्योंकि वो चीख पुकार जो है ना वो उस प्रकार की है। साधारण बच्चे मम्मी मम्मी करते तो वो ठीक है, वो झगड़ा करते रहते हैं, अपने आप खेलते रहते हैं, लेकिन कभी गिर जाता है, समझो किसी का फ्रैक्चर हो गया, तो जिस प्रकार से पुकारता है वैसे माँ दौड़ती है। तो हमें भी ऐसे पुकारने का अभ्यास करना चाहिए, भले आज नहीं प्रैक्टिस हमको, लेकिन भविष्य में हमको ऐसे पुकारने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि वही पुकार सबका सार है। जिनको अपना बनाना है, उनका ध्यान आकर्षित करना है, तो वही माध्यम है उसका। कलयुग में आप यज्ञ वगैरह नहीं कर सकते, उनका ध्यान आकर्षित, यज्ञ कर सकते हैं लेकिन उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए यज्ञ नहीं है, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यान नहीं है, यज्ञ नहीं है और कुछ नहीं है। कलयुग में एक ही माध्यम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, अभी दूसरी लीला यहाँ पर रणवारी, श्री कृष्णदास बाबा जी और ठाकुर जी का नाम राधा विनोद जी, तो इसका नाम है रणवारी। रण का मतलब है युद्ध, है ना? तो आपको ये कथा पता होगी कि भगवान ने जब ये घोषणा की कि मैं आऊँगा कंस आदि राक्षसों का वध करने के लिए मैं आऊँगा, वो प्रसंग जो है ना वो गर्ग संहिता में दिया है, जिसमें भगवान गौलोक वृंदावन में श्री हरि स्वयं कृष्ण गोलोकेश्वर राधा रानी के साथ प्रकट होकर वहाँ पर घोषणा करते कि मैं आऊँगा। तो उस समय और भी बड़ा विस्तार में वर्णन दिया है। क्या वर्णन दिया है कि जितने भी खड़े थे देवता लोग, देवी देवता देव ऋषि जितने भी लोग थे, उन सबको उन्होंने एक एक रोल अदा कर दिया। बोला शंकर जी महाराज आप अश्वत्थामा बनो, हाँ अष्टवसु में से एक को बोला आप भीष्मदेव बनो, सूर्य को बोला आप द्रोणाचार्य बनो। ऐसे मतलब मैं आपको खैर गलती कर सकता हूँ, लेकिन हर एक उपस्थित व्यक्ति को एक रोल दे दिया वहाँ पर, देवताओं को सभी को रोल दिया, लेकिन कामदेव ने जानबूझकर कोई रोल एक्सेप्ट नहीं किया। तो भगवान समझ गए कुछ मन में इसके कुछ है। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि कामदेव को वास्तव में ये भगवान है इस पर संदेह था और वो भगवान समझ गए। तो भगवान किसी को जबरदस्त नहीं करते, आपको करना ही है मेरा आज्ञा है सर, ठीक है कोई बात आप मत करो। जैसे चंद्र देवता को बताया कि आपको भी सहभाग देना है महाभारत में, तो उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र से मुझे बड़ी आसक्ति है, मैं कम से कम मैं दे सकता हूँ कम से कम समय, इसलिए अभिमन्यु 16 साल का वध हो गया उसका। इसका पीछे एक कारण है, एक कारण ये है कि चंद्र देवता अभिमन्यु से बहुत ज़्यादा आसक्त थे अपने पुत्र से, तो जल्दी फ्री करके उनको भेज दिया पिताजी के पास। वैसे कामदेव ने कोई रोल नहीं लिया, तो कामदेव भगवान की परीक्षा करना चाहते थे। तो दो जगह पर परीक्षा हुई, जब रास हुआ वृंदावन में शरद पूर्णिमा वाला, तो उस समय वो वहाँ पहुँचे, वो हमारे हॉस्पिस के बाजू में जगह है ना मदन टेर, आप गए ना वहाँ पर, बहुत सुंदर स्थान है वो, पूरे कंक्रीट जंगल के बीच में अभी भी वो वन है, वो छोटा सा है लेकिन बहुत सुंदर वन है। वहाँ पर एक पुरुष और अनेक करोड़ों स्त्रियाँ सुंदर सुंदर उनके साथ लीला कर रही थी। तो कामदेव और उनकी पत्नी का नाम क्या है, रति देवी, वो सारे देवताओं में से बहुत सुंदर पुरुष और बहुत सुंदर स्त्री है, उनके सामने सौंदर्य और किसी देवता का नहीं है, ना इंद्र का है, इंद्र भी बहुत सुंदर है लेकिन रति और कामदेव के सामने कुछ नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो अपना पुष्प बाण और पुष्प धनुष लेकर सब जगह घूमते रहते हैं, और जहाँ जहाँ स्त्री पुरुष या भगवान को छोड़कर भोग लेने का प्रयास होता है वहाँ वहाँ बाण मारते रहते हैं, और उनके बाण से सब लोग विद्ध हो जाते हैं, विद्ध यानी अफेक्टेड अफ्लेक्टेड हो जाते हैं। तो उनका काम है, हम जैसे लोगों के बाण तो लगे ही रहते हैं हमेशा, सदैव लेके ही घूमते रहते हैं, कथा भी कथा तो बाण लगा रहता है उधर उनके द्वारा डाला हुआ। तो उन्होंने सोचा कि ये अच्छी जगह है, यहाँ पर एक पुरुष बहुत सारी स्त्रियाँ प्रेम की लीलाएँ कर रहे हैं, है ना, पुरुष स्त्री का आकर्षण में बसा हुआ लीला यहाँ पर हो रही है। तो उन्होंने धनुष को बाण रखा उस पर, पुष्प बाण पुष्प धनुष, और वो तान लिया, और जब हम निशाना बनाते ना तो जिसको मारना है उस पर नोक करते हैं, है ना, ऐसे नोक जो है ना वो निशाने पे रहता है, तो वो नोक जो है ऐसे कृष्ण के मुख पर निशाना बनाया उसका, और यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम, श्याम सुंदर का जो सुंदर सौंदर्य है अनंत अनंत और सदैव बढ़ने वाला वृद्धिंगत होने वाला सौंदर्य, जिसका कोई कवि कोई वक्ता उसका वर्णन नहीं कर सकता, इतना सौंदर्य, और वो भी कैसे है अति उत्कट उच्च सौंदर्य, कैसे है वो परमोच्च लीला कर रहे हैं, रासलीला, जीव के प्रति परमोच्च प्रेम दिखाने का जो लीला है वो रासलीला है। और रासलीला में जैसे ही हमारा भी जब हम जब अच्छा करते ना तो चेहरे में एक रौनक आ जाती है, कितना भी ना सुंदर दिखने वाला भक्त हो अच्छा जब करने वाला हो तो उसके चेहरे पर एक आकर्षण निर्माण होता है जो हमारे भौतिक व्याख्या से नहीं होता है, काला है नाक चपटा है ऐसा नहीं होता है, वो सौंदर्य आपको आकर्षित करेगा, बुढ़ा होगा या जवान होगा उसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो भगवान जब सर्व सौंदर्य के खान है, वो लावण्योत्तम भगवान है हमारे, वो जब अपना सर्वोच्च प्रेम की लीला कर रहे हैं तो उनका सौंदर्य हजारों गुना बढ़ जाता है, लाखों गुना बढ़ जाता है, राधा रानी का भी। तो वो सौंदर्य पे उन्होंने जब बाण अपना निशाना बनाया तो वो सौंदर्य को देखकर वो पागल हो गए, पूरी तरह से पागल हो गए। उनके हाथ से बाण धनुष फिसल गया, बाण भी फिसल गया और दोनों रति और कामदेव पिघल गए कंप्लीटली, पूरी तरह से पिघल गए। वो जगह में कामदेव जी पिघल गए हैं और भगवान ने कुछ अपना धनुष उठा के सावधान वगैरह कुछ बोला नहीं भगवान ने, मगर अपना काम करते रहे। भगवान ने उसको नोटिस भी नहीं किया, उसको दिखाया भी नहीं कि मैं जानता हूँ कि तुम आए हो। केवल भगवान के वहां होने से कामदेव को परास्त किया और दूसरी बार वो यहाँ पर आए रणमारी में। रणमारी बहुत भगवान का प्रिय स्थान है, तो सब गोपियाँ यहाँ पर रास के लिए आई थी, हजारों करोड़ों गोपियाँ थी। तो कामदेव ने कहा कि जाओ रति देवी, हम जाते हैं यहाँ पर और ऐसा वातावरण बनाओ कि सब लोग काम वासना से विद्ध हो जाएं, एक तरह से सब पर ऐसे बाण चलाएंगे, सारी गोपियों को विद्ध कर देंगे। तो कामदेव ने रति देवी को भेजा और ये रति कुंड बनाया। अभी आपको ये लुप्त है हमारी दृष्टि से, लेकिन ये इतना सुंदर बनाया कि उसको देखकर ही काम वासना जागृत हो जाए। कभी कभी कुछ वातावरण ऐसे होते हैं, उस वातावरण में जाते ही ऐसे मन में प्रचंड अनंत विचार आते हैं जो पहले कभी नहीं आते हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ आई और ऐसा मिस्टी, यानी क्या कहते हैं उसको, ऐसा स्वर्ग में कैसा होता है वातावरण, एकदम मिस्टी, यानी बहुत ज़्यादा भोग की स्थिति होती है, वो भोग प्रवृत्त बनाती है अपने आप को। तो सारी गोपियाँ ना धीरे धीरे प्रभावित होने लगी। वो गोपियाँ हैं फिर भी वो कामदेव के इतने तीव्र वातावरण के निर्मिति से प्रभावित होने लगी। और फिर कृष्ण आए तो कृष्ण ने देखा कि सारी मेरी गोपियाँ जो है ये कामदेव रति देवी के क्या कहते हैं फिजिकल और सटल, हाँ, स्थूल और सूक्ष्म प्रकार की माया से प्रभावित हो रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, रासलीला में क्या करते हो, वो अपने आप को हर एक गोपी के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो भगवान ने अपने आप को हर एक गोपी के साथ प्रस्तुत किया। अभी करोड़ों और करोड़ों कृष्ण निर्माण हो गए हर एक गोपी के साथ, और जैसे ही गोपी के सम्मुख श्री कृष्ण प्रकट हो गए सारा प्रभाव समाप्त हो गया और कामदेव और रति देवी शरणागत हो गए। वे आर वेरी सॉरी, हमने यहाँ पर आकर आपको परीक्षा करने का प्रयास किया, आपके गोपियों को बहकाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान की केवल उपस्थिति जैसे वहाँ पर थी वैसे यहाँ पर भी निर्माण हुई उपस्थिति, तो उपस्थिति में ही सब प्रभाव समाप्त हो गया, जो भी भोग प्रवृत्ति वाला सब कार्यक्रम था वो सब समाप्त हो गया। देख लो, तो ये वो भूमि है रणवारी जिसमें बिना युद्ध किए रण में कामदेव हार गए। तुम राधा रानी से कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि इस जगह का सौंदर्य कभी हमारे हृदय में प्रकाशित हो, जो कितना विशाल है वो भी मेरे ख्याल से एक लाक्षणिक और सिंबॉलिक है, क्योंकि कितने साल हो गए उसको फिर भी जल भी समाप्त हो गया है। पहले जल था, अभी भी जल भी उसके अंदर है लेकिन सूख रहे हैं उसके अंदर, इस प्रकार की है पानी है उसके अंदर, लेकिन जो इस प्रकार की वेली उस पर आई ना इसका अर्थ है कि वो समाप्त होने जा रहा है धीरे धीरे। अगर उसका जीर्णोद्धार नहीं किया तो फिर जल्दी ही वो ड्राई हो जाएगा। ये प्रकार का जो पौधा होता है ना वो ऐसे सूखने वाले कुंड में तैयार होता है। जैसे आप वहाँ जाओगे ना किधर कोकिला वन में, वहाँ पर रत्न कुंड है, वहाँ पर समुद्र देव ने अपना प्रकट किया है, समुद्र देव प्रकट हो गए रत्न कुंड। तो हाँ उधर भी वही पेड़ है, उसी प्रकार पेड़ मतलब पौधा। तो यह अंदर जो है वो श्री कृष्णदास बाबा जी की भजन कुटी और समाधि दोनों है इस साइड पे, ये दीवार पे, और सामने जो है राधा विनोद जी का विग्रह है और वहाँ पर राधा गिरधारी जी का विग्रह है और यह रति कुंड है। आप दर्शन कीजिए और प्रार्थना कीजिए। कि क्या प्रार्थना करेंगे आप, कामदेव के बाण सब जगह घूम रहे हैं, सब लोगों के विद्ध करते रखे हुए हैं, लेकिन कामदेव का प्रभाव केवल श्री कृष्ण की शरण लेने से ही नष्ट हो सकता है और कोई भी उसका इलाज नहीं है। आप योगा करो, आप प्राणायाम करो, इंद्रिय निग्रह करो, मीठा खाना तला हुआ खाना छोड़ दो, ज़मीन पर सो जाओ, 4 ही घंटा सो जाओ, लड़कियों को सबको दूर रखो, हाँ आदमियों को दूर रखो औरतों के लिए, ये सब भाइय कितने भी प्रयास करेंगे फिर भी कामदेव का प्रभाव नष्ट नहीं होता है। जो श्री कृष्ण के चरण में है, शरण में और चरण में है, उसको कामदेव छू नहीं सकता है, वो कामदेव के जाल से मुक्त हो जाता है। तो सब लोगों को सोचना ज़रूरी यह है कि अन्य कोई प्रयास करने में मत लगो, 128 माला करेंगे और केवल एक गाजर खाएंगे, ये सब कुछ है ना, इससे हृदय सख्त हो जाता है, मुलायम नहीं बनता है। लेकिन भगवान का नाम और भगवान की शरणागति के साथ लेने से हृदय बहुत मुलायम हो जाता है, उससे प्रेम उत्पन्न होता है। जब भगवान का प्रेम उत्पन्न होता है भगवान की शरणागति में, तो फिर कामदेव का प्रभाव नहीं होता है। मैं तो ये बता रहा हूँ माइक पे, लेकिन मेरी भी आपके लिए प्रार्थना है कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि बड़ी बड़ी बातें करने पर वैसा नहीं होता है कि जो बड़ी बातें करते हैं वैसा ही हम लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है। माया बहुत प्रभावी है, माया बहुत तेज़ है, वो किसको कैसा पकड़ती है वो विचार नहीं कर सकते हम। वी कैन नॉट बी टू कॉन्फिडेंट कि अब मैं तो छूट गया, नॉट पॉसिबल। जब छूट गया समझते हैं उसी समय पकड़ लेते हैं। तो जो हमेशा नम्र भाव में शरणागत रहते हैं वही बचते हैं। जो समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हो गया, वो गया काम से। तो जाते जाते आप सब प्रार्थना करना कि ये कामदेव का प्रभाव हमारे ऊपर जो है, हे भगवान हम आपकी शरण चाहते हैं। आज का शुभ श्लोक क्या था? कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। हे भगवान हम आप सब चरण आपके चरणों में एक धूलि कण का क्यों न हो एक पोजीशन चाहते हैं। देखिए वहीं पर एक ऐसी स्थिति है जहाँ कामदेव का प्रभाव नहीं होता है। तो आइए सब हम भगवान से पुकारें, कृपया प्लीज़ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। आप हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए, क्योंकि अभय अभय भयाम भया अमृत पूर्ण सब खाण। आपके चरण जो है वो पूर्ण भय से मुक्त हैं, और अभय क्या अशोक अभय अशोक अभय अशोक अमृत नहीं, शोक से अशोक है मतलब शोक से मुक्त कर देते हैं, भय से मुक्त कर देते हैं, और वो अमृत की खान है। भय और शोक जो है वही हमको भौतिक दुनिया में बांध के रखता है, भगवान के चरण जो है वो इनसे मुक्त करके हमको प्रेम का अमृत प्रदान करते हैं। ताइए सब लोग हम ये ब्रज भूमि में रज में बैठे हुए हैं, हम संकल्प करें, प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाएं, रोए भगवान के सामने, हमें बचा लो। अब यहाँ से निकल जाएंगे, बहुत लोग प्रश्न पूछ रहे थे, अब यहाँ से निकल जाएंगे बम्बई तो फिर वही चालू हो जाएगा सब, फिर यहाँ के सब बातें भूल जाएंगे हम। हाँ जैसे यहाँ पर गोपियाँ आई तो सब कामदेव के प्रभाव में प्रभावित हो गई, वैसे यहाँ से बम्बई जाएंगे तो वैसा ही माहौल वहाँ पर है। लेकिन भगवान का नाम जो कोई पुकारता है ना वो हमेशा इससे मुक्त रहता है, इसलिए पुकारो, संकोच मत करो, क्योंकि जिसको बचना है उसको पुकारना है, जिसको बचने के लिए गंभीरता नहीं है वो नहीं पुकार सकता। जो बहुत ही डेस्परेट हो चुका है, आर्त हो चुका है, वही पुकार सकता है, और आर्त वही होता है जो हकीकत में उसको बहुत कष्ट होते हैं, और जो व्यक्ति सिंसियर होता है ना भगवान उसको बहुत कष्ट देते हैं, ताकि वो समय सदैव आर्त रहे, सदैव ऐसा दुखी रहे बहुत, ताकि उस भयंकर दुख में वो असहाय होकर पुकारता है तो उसकी पुकार सुनी जाती है। तो ये मत समझना आपकी अरे मुझे इतना भगवान क्यों तड़पा रहे हैं, मैंने क्या बुरा किया है, मैंने ही मुझे ही क्यों दे रहे हैं, मैं तो कितने साल से भजन कर रहा हूँ। लेकिन उसको ही भगवान कष्ट देते हैं ताकि वो सदैव पुकारते रहे, सदैव उसको आश्रय प्राप्त होते रहे। और जो खुशी में है अच्छे सुकून में है वो क्यों पुकारेगा, क्या जरूरत है पुकारने की, उसको बहुत सारा कष्ट है, बहुत पीड़ा में है, वही हाथ उठा के पुकारता है, अरे भगवान राधे राधे सुन लो टेर हमारी, ओ वृष भानु दुलारी, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। तो सब जगह पर मारपीट के घिसपीट के आते हैं, उनको यहाँ पर सहारा मिलता है। तो यहाँ पर आइए, पुकारिए, सहारा लेकर जाइए, सहारा बनाए रखिए और जीवन को सफल कीजिए। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।